نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس میں سے آج عدی بن حاتم ان کی کہانی پڑھیں گے. آپ نے میں نے پاکستانیوں نے خاص طور پہ انڈیا والوں کا بھی یقیناً ایسے ہی ہوگا مزاج حاتم تائی کا نام سنا ہوگا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حاتم تائی کون تھا اور کہاں تھا. تو آج آپ اسی کے بیٹے کی کہانی عدی بن حاتم کے نام سے پڑھیں گے. اور حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے نا تو کیسے چنتا ہے یہ آپ کو مجھے اس کہانی میں سے ملے گا. اور جب ہم دوسروں کے ہدایت کے اس طرح تڑپنے اور ہدایت کی طرف آنے کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ہدایت اور بھی پیاری لگنے لگتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بھی اس چیز کے لیے چنا ہے. عدی بن حاتم ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یہ اس وقت ایمان لائے جب عام لوگوں نے کفر اختیار کیا. اچھا اب آپ اس جملے کو سن کر کیا کہیں, خود کلامیاں کیا ہوتی ہیں قرآن پڑھنے والوں کی کہ اللہ مجھے بھی چن لے. قرآن پڑھے نا جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا تفسیر کی کلاس میں جہاں بھی جو بات سنے نا کہا کر اللہ جی مجھے بھی, اللہ جی پلیز میرے ساتھ بھی. یعنی جیسے بچے لاڈ کرتے ہیں نا کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی تو فوراً مانگنے لگتے ہیں. تب آپ نے میں نے ہدایت کی بات سنی تو ہمارے بھی دل میں یہ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ پلیز مجھے بھی ہدایت کے لیے چن لے, جب لوگ دین کا انکار کر رہے ہو تو مجھے بھی ایمان لانے والا بنا دے. پھر کہتے ہیں انہوں نے حق پہچانا جب کہ عام لوگوں نے اس کا انکار کیا. تو اب کیا دعا کریں گے آپ اور میں, بولیے کہ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو گئی نا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کام اللہ کے حکم سے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں انہوں نے وفا شعاری کا ثبوت دیا جب کہ عام لوگوں نے دھوکہ دیا. کیا دعا ہوگی آپ کی ذرا بولیے کہ اللہ مجھے بھی اس دین کے ساتھ وفا کرنے والا بنا. اور کس نے کی تھی وفا جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے, سورۃ نجم, و ابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا. تو اللہ ہمیں بے وفا نہ بنانا. اور یہ اس وقت دین کی طرف متوجہ ہوئے جب کہ عام لوگوں نے اس سے بے رخی اختیار کی. دعا مانگی آپ میرے کہے بغیر سارے اونچی آواز میں کہ اللہ مجھے بھی دین کی طرف متوجہ کر دے, لوگ مانے نہ مانے میں نے ماننا ہے. دیکھیے یہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ شروع ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہی تو پھر اصل محبت پیدا ہوتی ہے. پھر آپ کو اللہ اپنا لگے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو باتیں ہوں گی نا یہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ لے کر چلے گا. اور آپ فیل کریں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اسلام کی طرف آئے, کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنا بناتا ہے. اور جب پھر کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرتے ہیں. عرصہ دراز تک بڑی نفرت, حقارت, بے رخی اور بے اتنائی میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر 9 ہجری میں عرب کا ایک بادشاہ اسلام سے متاثر ہوا. اسلام قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا شوق اس کے دل میں سمایا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ جی معلوم ہے. اور 9 ہجری, 9 سال ہو گئے ہجرت کر کے بھی گئے ہوئے. لیکن جب کوئی دال گل جائے, دیکھیے کچھ دالیں جلدی گلتی ہیں نا کچھ دیر سے گلتی ہیں. وہ ایک پیلی دال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جلدی گلتی ہے, فٹافٹ جب کچھ نہیں پکانے کو وہ پکا لو. آپ کے میرے حال ابایا اتار کے سیٹل ڈاؤن ہونے میں بیچاری گل جاتی ہے. لیکن کچھ چنے, کچھ دالیں, کچھ ریڈ بینس بہت دیر سے گلتے ہیں. کچھ کو تو رات کو سوک کرنا پڑتا ہے پانی میں, بھگو دو پھر گلتی ہیں نا. انسانوں کے دل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے. تو اس وقت میں جو پیغام تھا وہ کہہ لیجئے کہ شاہی لیول پہ پہنچ گیا. لیکن اس کے بھی 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دی. کون سا تھا یہ بادشاہ؟ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عدی رضی اللہ عنہ تھے, جن کے والد حاتم تائی کو سخاوت کے سلسلے میں ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو آج آپ کو ایک اور بات پتہ چل گئی कि हातिम ताई जो थे वो अरब से थे, कुफर पे थे, बेटे को अल्लाह ने इस्लाम दिया। जनरस बहुत थे, खिलाते पिलाते बहुत थे लोगों को। कबीला तई, तो ऐसे तई लिख लें ऊपर हमजा छोटी सी डाल लें, कबीला तई ने हातिम ताई की वफ़ात के बाद सल्तनत की जिम्मेदारी इनके बेटे जनाब अदी रदी अल्लाह अन्हु को सौंप दी और पूरे कबीले ने अपनी आमदन का चौथाई हिस्सा इनके लिए मखसूस कर दिया और इनके हुक्मरान बनने पर खुशी का इजहार किया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलानिया तौर पर इस्लाम की दावत पेश की और अरब जौक दर जौक हल्का बगोशे इस्लाम होने लगे, ये सूरत हाल देख कर जनाब अदी रजी अल्लाह उन्होंने ख़तरा महसूस किया कि अगर आम लोग इसी तरह आपकी दावत से मुतासिर होते रहे तो बिलाखिर हमारी सल्तनत भी जाती रहेगी। तो उन्होंने इस्लाम की इशाअत को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और इनाद की इंतहा कर दी। आपसे अदावत का ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। बिलाखिर अल्लाह सुबहानहु ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से इस्लाम कबूल करने और हिदायत की राह अख्तियार करने के लिए इन्हें इनशराहे सदर की अजीम नेमत से नवाजा। क्या बात सीखी इतने हिस्से में? पहली बात देखिए कि अल्लाह हिदायत जब देता है ना तो अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखता। अमीर बच्चा था, फिर बादशाह था अपने वक्त का, और कबीले ने पूरी आमदन का चौथाई हिस्सा इनके लिए खास किया। इससे क्या पता चलता है कि कबीले वाले इस बादशाह को पसंद करते थे और इसके हुक्मरान बनने पे खुश थे। दुआ कीजिए कि आज के दौर में भी जो हुक्मरान आए तो वो आवाम की खुशी का ज़रिया बने। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब नबी सल्लम ने इस्लाम की दावत खुले तौर पर पेश की और अरब लोग आए तो अदी साहब को क्या ख़तरा हुआ कि अगर सब लोग नबी सल्लम की दावत से मुतासर हुए तो हमारी सल्तनत जाएगी। ये खौफ किसके दिल में आता है? जिसको अपनी क्वालिटी के कमज़ोर होने का ख़तरा होता है। ये तो एक बादशाह का खौफ था ना। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कहीं दीन का काम होता है ना तो पहले से दीन का काम करने वालों में से कुछ लोग, सब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यही खौफ लाहक होता है, अगर इनकी क्लास शुरू हो गई तो हमारी चली जाएगी, अगर ये मस्जिद बन गई तो हमारी मस्जिद के नमाजी उधर चले जाएंगे। तो अगर ये ख्याल किसी के दिल में भी आता है ना तो ये ईमान की कमज़ोरी है, तवक्कुल अल्लाह के ख़िलाफ़ है और अल्लाह ताला को अपना रज़ाक होने के ख़िलाफ़ समझने वाली दलील है। उसको आई ठीक है, फिर आप देखिए कि उन्होंने इस्लाम से रोकने का हर हरबा इस्तेमाल किया, बुग़्ज़ भी रखा, इनाद भी रखा, 20 साल तक रहा, लेकिन आखिर में क्या मिला? हिदायत मिल गई ना। तो आज मेरे और आपके लिए इसमें अमल क्या है कि बिलफर्ज़ आज अगर कोई आपकी दीन की वजह से मुखालफत भी करता है ना तो किल विद काइंडनेस, मोहब्बत के साथ चलते थे, क्योंकि मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत दुनिया को फतह करती है। नबी सल्लम का जो मारका था ना वो यही था कि आपने मोहब्बतों से दिल जीते, कि बिल आखिर ऐसे ऐसे लोग आपकी वजह से इस्लाम में आ गए जो पहले आपको पसंद नहीं करते थे। लेकिन इनका वाक़या बड़ा खूबसूरत है, आइए सुनते हैं। जनाब अदी की इस्लाम कबूल करने की नाकाबिले फरामोश दास्तान हम इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं क्योंकि वो ख़ुद ही इसका हक अदा कर सकते हैं। जनाब अदी रदी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं। अब आप इनको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करें कि जैसे तसव्वुर में आप इनको देख रहे हैं और वो सब हो रहा है, क्योंकि कहानी को विजुअलाइज तो फिर करना ही पड़ता है। क्या कहते हैं? जब मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सुना तो मेरे दिल में इस कदर नफ़रत पैदा हुई कि शायद ही किसी अरब बाशिंदे दिल में इस जैसी नफ़रत पैदा हुई हो। मैं अपने इलाके और कौम का एक बावक्कार और मुअज़्ज़ज़ फ़र्द था और अकीदतन नसरानी था। यहाँ समझ लीजिए कि इस्लाम के आने से पहले रिलीजियस लोग जो होते थे ना वो नसरानी बनते थे। आप कह लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मजहबी शख्स था, ये कह लीजिए, क्योंकि फिर कम से कम किसी ना किसी दीन को तो मान रहे थे ना। और दूसरे अरब बादशाहों की तरह मैं भी अपनी रियाया से इनके माल का चौथाई हिस्सा वसूल करता था। ये तो आपने भी सुनी लिया ना कि अवाम ने अपनी चौथाई माल को इसके नाम पर निछावर कर दिया। तो यहाँ ज़रा नोट कीजिए इस्लाम का एहसान। इस्लाम क्या मांगता? 2.5, ये क्या 1/4, 25%। तो फिर इस्लाम में जो ज़कात का हिस्सा वो ज़्यादा है या जो लोग पहले बादशाहों के जुल्म का शिकार होकर देते थे? पहले मरहले पर तो मैंने नफ़रत और हकारत की बिना पर कोई परवाह ना की, लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत में इजाफा हुआ और आपके लश्कर को सरजमीन अरब में चारों तरफ फतूहात हासिल होने लगी तो फिर मैंने अपने दिल में ख़तरा महसूस किया और ऊँट चराने वाले अपने ग़ुलाम से कहा, आज के बाद चाको चौबंद और ताकतवर ऊँटनियाँ हर दम मेरे लिए तैयार रखो और ऐसी सुधाई हुई हों कि सफ़र में कोई तकलीफ़ महसूस ना हो। एक दिन सुबह सवेरे मेरा यही गुलाम दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे आका, अगर लश्कर इस्लाम आपके इलाके पर हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? मैंने घबराहट में इससे पूछा, क्या बात है? इसने कहा, मैंने आज घरों में झंडे लहराते देखे हैं। मुझे पता चला है कि आज लश्कर इस्लाम ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया है और कई घरों पर कब्जा कर लिया। मैंने अपनी गिरफ्तारी का ख़तरा महसूस करते हुए इसे कहा, जल्दी से वो ऊँटियाँ मेरे पास लाओ जिनके तैयार रखने का मैंने तुझे हुक्म दिया था। इसी वक्त वो ऊँटियाँ मेरे पास लाई गईं और मैं अपने अहले खाना को इन पर सवार करके मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया ताकि मैं अपने हम मज़हब नसरानियत के अलमबरदार लोगों के पास सुकूनत अख्तियार कर सकूँ। हुआ ये कि मैं इस जल्दबाजी और घबराहट में अपने तमाम ख़ानदान को इस सफ़र में हमराह ना ले सका, लेकिन जब मैं ख़तरनाक और कठिन रास्तों से गुजरा तो बाज़ अफराद रास्ते में ही हलाक हो गए। इस अफरा तफरी में मेरी हमशीरा कौन होती हैं? बहन। क्यों कहते हैं हमशीरा बहन को? हम शीरा, शीर क्या होता है? दूध। तो हम शीरा साथ दूध पी हुई यानी बहन। ये नजद ही में रह गई, इसको अपने साथ न ला सका जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दिली सदमा था, लेकिन अब मेरे लिए वापस लौटने की भी कोई सूरत ना थी। इसी गम में गलताओं परेशान कठिन रास्तों से गुजरता हुआ शाम पहुंच गया और वहां मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की या नसरानियत का गलबा देखकर मुझे दिली मुसरत हुई, लेकिन अपनी बहन की जुदाई और इसे पेश आने वाले खतरात का सदमा मुसलसल दामनगीर रहा। जिस हिस्से में क्या बात है आपके मेरे सीखने की, जब ईमान नहीं होता तो उसकी जगह पे फिर इंसान को अपनी जान की फिक्र लगी रहती है। बज़ाहर देखिए कैदी पे बहुत बड़ी मुश्किल आई है, लेकिन देखिएगा अभी ये इस्लाम का पेशखैमा बन जाएगी। तो ज़िंदगी की तारीख राहों में घबराया ना करें, इसमें से बहुत खूबसूरत सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। पहली बात देखिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना तो नफ़रत हुई, लेकिन आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में ये दिल कैसे बदलेगा। तो आज अगर कोई नफ़रत करता है ना तो आप बस पी जाएँ, दुआ करें कि अल्लाह उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दें। यकीन करें दिल इतनी जल्दी बदलते हैं। आप कई ऐसी सिस्टर्स को जानेंगी जो अपनी गवाही देती हैं, शादी हुई तो मियाँ बात भी नहीं करते थे और आज अगर आप देखें तो वो ऐसे लगते हैं जैसे रोमियो जूलियट हैं। ये मोहब्बत बन जाती है। कई बच्चे मोहब्बत नहीं करते अपने माँ बाप से, कई बच्चों के लिए माँ बाप की मोहब्बत नहीं दिलों में होती, वक्त के साथ दिल बदल जाते हैं। कि यहाँ आपने एक चीज़ पर भी शायद गौर किया हो कि इन्होंने पहले से ऊँटनियाँ तैयार की थी, क्या सोच के कि मैं हमला करूँगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब उनको इशारा मिला कि वहाँ कुछ साथियों को भेजा गया तो वो सामना नहीं कर सके बल्कि भाग गए। तो यहाँ से आपको अल्लाह के नबी का अंदाज़ भी समझ आता है कि ऑफेंसिव था, डिफेंसिव नहीं थे। हर जगह बंदा अगर अपनी माजरत नहीं पेश करता रहे ना तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। बहुत महरूम है वो लोग जो हर वक्त माजरत पेश करते हैं। अपने घरों में अपना हक लें, अपने इंसानों में, रिश्तों में, नातों में, हर वक्त आप दूसरों से दबेंगे ना तो वो जितना आप स्प्रिंग को दबाएं वो उतना ही दबता है, फॉर्म को दबाएं दबता है। तो इंसान को हर वक्त ऐसा नहीं हालात रखने चाहिए कि वो एक एहसास जुर्म के शिकार हो कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। आइए ज़रा आगे देखते हैं क्या हुआ। मुझे ये इत्तला मिली कि मेरे वहाँ से कूच कर आने के बाद लश्कर इस्लाम ने हमारे घरों पर हमला किया और वो पूरे इलाके को फतह करने के बाद मेरी बहन को दीगर कैदियों के साथ गिरफ्तार करके यसरब ले गए और इनको मस्जिद में एक दरवाजे के साथ मिले हुए हवालात में बंद कर दिया। यानी बहन की खबर क्या मिली कि उसको मस्जिद के साथ किसी कमरे में बंद कर दिया गया। मुलहका क्या होता है? लहका से। लहका क्या? मिली हुई, अटैच्ड के मानों में। मुझे ये इत्तला मिली कि नबी अलैहिस्सलाम एक रोज़ हवालात के पास से गुजरे तो मेरी बहन पुकार उठी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये या रसूलुल्लाह कह रही हैं तो हम भी कह सकते हैं ना। कब कहते थे सहाबा अल्लाह के नबी को या रसूलुल्लाह? जब वो आपके सामने थे। जन्नत में जाकर हम भी कहेंगे इंशाल्लाह या रसूलुल्लाह, क्योंकि वो सामने थे। या खिताब का सीगा होता है, जैसे आपके सामने अगर कोई, जैसे मैं कहूँ कि ए मोमिना बात सुनिए, या ओ मोमिना प्लीज़ लिसन टू मी, लेकिन अगर यहाँ मुझे फरा नहीं दिखी तो मैं कहूँ ओ फरा बात सुने, तो कहेंगे फरा तो इधर है ही नहीं, आप उनको क्यों बुला रही हैं। बिल्कुल यही कैफियत है। क्या कहने लगी? मेरा बाप फौत हो चुका है और मेरा निगरान आंखों से ओझल है, मुझ बेचारी पर एहसान कीजिए, अल्लाह ताला आप पर एहसान करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़ फरमाया, तेरा निगरान कौन है? इसने बताया, मेरा भाई अदी बिन हातिम ताई। आपने फरमाया, वो जो अल्लाह और उसके रसूल से राह फरार इख्तियार कर चुका है। फिर आप चल दिए और मेरी बहन को इसी हालत में रहने दिया। जब दूसरा दिन हुआ तो मेरी बहन ने छुटकारे के लिए दोबारा अपनी अरज़ पेश की। تو آپ نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ آج رحمت دو عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنی عرض پیش کرو۔ تو بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد فوت ہو گیا اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ کس کو نگران کہہ رہی ہیں؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی باپ کے بعد نگران ہوتے ہیں۔ اللہ آج کے بھائیوں کو بھی ایسا بنا دے کہ آج کل کی بہنیں بھائیوں کی نگرانی برداشت کرتی، اور آج کل کے بھائی ہیں نگرانیاں کرنے والے، وہ تو اور کسی کی بہن کی نگرانی کرنے میں مصروف ہے کہ یہ سیدھی اسکول پہنچ جائے اور اس کو میں چھوڑ جاؤں گا، لے آؤں گا تو میری بہن کی کوئی اور کر لے گا۔ تو دعا کیجئے کہ جو رشتوں کا ایک تقدس تھا وہ آج بھی قائم رہے۔ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے فرمایا آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کیا میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج اسے بات کرنے کا حوصلہ دلایا تھا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی تھے۔ پھر وہ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہی۔ چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئی اور اسی وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک با اعتماد شخص بھی ہے، وہ مجھے بحفاظت ملک شام میں اپنے خاندان تک پہنچا دے گا۔ از راہ کرم مجھے اجازت دیجئے۔ تو آپ نے اسے لباس، اونٹنی اور زادہ راہ دے کر اس قافلے کے سر روانہ کر دیا۔ جناب ادی فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمشیرہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہیں۔ ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں، دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندے کو گلٹ جاتا نہیں ہے، غلط کام کیا ہو تو بعد میں بندے کو گناہ یاد آتا ہے۔ بخدا ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواز، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہ آئی کہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو، اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا پتہ چلا کہ بہنیں بہنیں ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ بادشاہ کی بہن ہو، ادی کی ہو۔ کہیں آپ لوگ تو نہیں اپنے بھائیوں سے یہ گلے شکوے کرتی؟ ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اپنے بچوں میں مگن ہو، پاکستان بھی آئے ہیں تو ہمیں تو تم پوچھتے ہی نہیں ہو۔ ہاں تو بہرحال ایک مان ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ اس نے اس کو اس کی غیرت کا احساس دلایا کہ تم مجھے غیر مردوں میں چھوڑ آئے ہو۔ تو فطری طور پہ جو عورت ہے نا وہ کمزور ہے، اس کو اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے۔ بھائی کا جواب سنیے، میں نے کہا بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیں کچھ آرام تو کر لیں، اب تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی۔ آپ میں سے کوئی بہن تو اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہے؟ آپ سوچیں تکبیرات پڑھنے کا اجر ہے یا روزے رکھنے کا اجر ہے، تو روٹھوں کو منانے کا بھی اجر ہے، تو پھر لکھیے اپنے لیے کام۔ کیا مشکل ہے؟ آپ کو پتا کہ روٹھوں کو منانے کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ انا، انا کو مارتے۔ خون کے رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں چھوٹتے، اور کبھی دوسرے سے بھی نہیں ناراض ہوں، کسی رشتے سے مت ناراض ہوں۔ سچی اور خوبصورت خوشیاں آپ کو ملیں گی کب؟ جب آپ لوگوں سے راضی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے قرآن کی سب سے بڑی چوٹ جو نا ہماری انا پہ پڑتی ہے، انا اتنی دبتی ہے قرآن پڑھنے کے دوران، دب دب کے اس کا تو وہ حشر ہی ختم ہو جاتا ہے، پریس ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں میں کیا اور میرا غصہ کیا اور میری ناراضگی کیا۔ تو خیر بہن راضی ہو گئیں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ بڑی دانش مند، زیرک اور محتاط عورت تھی۔ میں نے اسے رسول اللہ کے متعلق دریافت کیا اور آپ کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اس نے مجھے کہا بھائی جان فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا۔ अगर वो बादशाह हैं तो इनकी बारगाह में आपको रुस्वा नहीं किया जाएगा। यानी देखिए, आप बहन जरिया बन रही है भाई की हिदायत का। और कौन सी बहन बनी थी? उमर रजी अल्लाह अनहु की बहन। और किस बहन का जिक्र कुरान में है? सूरत कसस, मूसा की बहन। तो फिर भाई बहन का रिश्ता, इसकी कदर कीजिए, ये खूबसूरत रिश्ता है। जनाब अदी फरमाते हैं कि मैंने रखते सफ़र बांधा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए बग़ैर कोई ज़मानत हासिल के मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ा। ये क्या बात हुई भाई? दुश्मनों के इलाके में जा रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं। वजह क्या है? अल्लाह के नबी पर एतमाद था उनको। यह नहीं था कि मुझे देखते ही गोली चला देंगे। देखिए, ऐसा बर्ताव रखिए कि दुश्मन भी आपसे हुस्ने सलूक के मुंतज़िर हों। अलबत्ता मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह आपके ज़ेरे असर आ जाऊँ। मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने सलाम किया। आपने इरशाद फरमाया, तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ की, आदी बिन हातिम। आपने खुशी का इजहार फरमाया, मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल दिए। इस दौरान मैंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक नहीफ लाचार बुढ़िया ने आपका रास्ता रोक लिया। इसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। इसने अपनी कोई ज़रूरत आपकी खिदमत में पेश की, जिसे आपने इसी वक्त पूरा कर दिया। मैंने अपने दिल में कहा, बखुदा ये बादशाह नहीं है। ज़रा बताएंगे इसको ये कैसे पता चला? क्योंकि ये खुद भी बादशाह था। उसको पता था कि ये शाही आदाब नहीं है कि रात जाती है एक औरत एक शख्स का रास्ता रोके और बात करे और फिर उसकी बात पूरी भी हो जाए। तो नबी में और बादशाह में ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि नबी प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे होते। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और आगे चल दिए, यहाँ तक कि हम घर पहुँच गए। आपने एक तकिया मुझे दिया कि इस पर बैठ जाओ। मैं शर्माया और अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही इस पर बैठें। लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया, तुझी को इस पर बैठना होगा। मैं आपका हुक्म मानते हुए इस पर बैठ गया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए, क्योंकि घर में इसके अलावा कोई भी और चीज़ ना थी। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, ये किसी बादशाह की आदत नहीं हो सकती। फिर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए और फरमाया, क्या तुम नसरानियत और लादीनियत के दरमियान मुजब्जब तो नहीं, यानी डाउटेड तो नहीं हो, शक तो नहीं पड़ा हुआ? मैंने अर्ज़ की, बिल्कुल आपका इरशाद दुरुस्त है। बहुत सारी बातें इसमें गौर व फिक्र की। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हॉस्पिटेबल होने का सबूत दिया और उनको तकिया पेश किया, खुद उसके बगैर बैठ गए, इज्जत दी उसको। एक और रिवायत में आता है, उन्ज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनकी रुतबे के मुताबिक इज्जत दो। आप देखिए कि आपको इसमें मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये बात नोट कीजिए। देखिए, कभी लोगों से लड़ने कटने मरने की कोशिश ना करें। मैं तो दिन रात अपने दिल को भी यही कहती हूँ कि 10 नए लोग आएँ और उनकी नस्बत एक पुराना वापस आ जाए, उसकी खुशी ज़्यादा। मार्केटिंग की ज़ुबान में कहते हैं कि एक दुकान है, उसमें रोज़ कितने कस्टमर आते हैं? 100 लोग। तो वो उसमें अगला सवाल आपको पता क्या करते हैं? कहते हैं, हाउ मैनी रिपीटेड कस्टमर डू यू हैव। रिपीटेड कौन होते हैं? जो बार बार आए। किसी भी दुकान की कामयाबी क्या है कि वहाँ जो एक बार गया वो बार बार आए, दूसरों को लाए। आप रोज़ 100 आए, कभी वापस ही नहीं आए, मतलब क्या? दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है सच के अंदर, कि हक से थोड़ी देर के लिए लोग दूर हो जाते हैं। कभी सुस्ती, कभी शक, कभी फितने, आजमाइशें, विस्पर्स, लेकिन दिल ठुकता हक में ही है। और इस बात को आप ऐसे सब लोगों से शेयर कर सकते हैं कि जो वाकई किसी वक्त हिदायत से जुड़े और फिर पीछे हो गए। बाद में वो फिर आना आ जाए तो ना आए, गिल्ट आए तो ना आए, शर्मसारी है, लेकिन उनका दिल कह रहा होता है कि हम जाएंगे। तो हमारा एक दीनदार होने के नाते क्या फ़र्ज़ बनता है? कभी लोगों को शर्मसार ना करें। मोहब्बत ऐसी दें कि आपकी मोहब्बत उनके दिलों को पिघला दे, क्योंकि मोहब्बत फतह आलम, मोहब्बत फतह कर देती है दिलों को। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम को एक औरत ने रोका और आपने उसको इज्जत दी, तो क्या पता चला कि असल इज्जत वो है कि आप पीपल पर्सन बने, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, ना कि अपने प्रोटोकॉल में बैठे रहें। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़ आपको इसमें क्या मिलती है, और वो क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज शनास कितने थे, पहचान गए कि ये गड़बड़ है इसके दिल में। बस दफ़ा आपके पास कुरान सीखने आते हैं ना, जैसे आप सबको भी यही कहूँगी, लोग कुरान सीखते हैं आपके पास क्लास में आए, अब आप उसको फुल फ्लेज अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये कोर्स शुरू हो रहा है, वो हो रहा है, इधर आइए, इधर पार्टी, ये वो, क्योंकि एक तो आपकी पार्टियाँ बहुत हैं, एक तो आपके कोर्स बहुत है, अब हम क्या करें? हैं, नहीं, हमेशा देखें जो आया है वो आपको ताड़ रहा है, वो यूँ देख रहे, कोई देख रहा है ना आपकी दीवारों को, छतों को, पंखों को, बस समझे ये कुछ गड़बड़ लेके आया है, या किसी से कुछ सुन के आया है, या आपको तनकीदी नज़रों से देख रहा है। तो आप फील करेंगे कि जितना ज़्यादा आप लोगों को पहले माइंड क्लियर करके देखेंगे ना, क्लैरिटी करें, हाल पूछें, बैठिए, कैसी हैं आप, ठीक हैं, अच्छा लगा, पहले क्या करती हैं, किधर जाती हैं, किससे सुन के आई हैं, किसने बताया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन दें। थर्ड साने अगर इन्फॉर्मेशन देंगे ना तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं बाज़ूकात। तो मिजाज शनासी बहुत ज़रूरी, यही आपको अपने बच्चों की भी लाजमी है, बीवियों को अपने शोहरों का मिजाज शनास होने की ज़रूरत है, और अपने साथियों को देखें। अब आप बैठे हैं गुस्से में अपने एक साथी के किसी रवैये पे, इतने में वो आपके सामने आए, आप शुरू हो गए, जो दिल में था बोल दिया, बाद में पता चला वो तो फटी पड़ा, वो तो पता नहीं कितनी बड़ी मजबूरी में खड़ा था, आप उसका माहौल ही नहीं समझे। 10 बातों पे गुस्सा हो ना तो एक पे गुस्से का इजहार करें, 9 दिल में रख लें। मिजाज शनास बंदे से लोग दूर नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि इसको हमारी इस बेपरवाही पे गुस्सा तो आया होगा, लेकिन जब इसको हमारे हालात का पता चलेगा तो ये उसमें इंशाल्लाह हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगा। आगे पढ़ते हैं, फिर आपने फरमाया, क्या तुम अपनी कौम के मालो दौलत में से चौथा हिस्सा नहीं लेते, जो कि खुद तेरे दीन की रोशनी में तेरे लिए हलाल नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, और मुझे इस बात का यकीन हासिल हो गया कि आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। जी ये मुझे बता सकते हैं कि ये अल्लाह के नबी को कैसे पता चला? क्रिश्चियनिटी में भी ये नहीं था, और आपको पता है आज भी, इवन आज भी अमेरिका में बहुत सारे लोग अपनी इनकम का 1/4 यानी 25% चर्चिस को देते हैं। तो फिर ये उनके अपने दीन के ख़िलाफ़ है ना, और इधर से क्या पता चला कि दूसरों के दीन को भी पढ़ना चाहिए। जब आपको दूसरों की खबरें होती हैं तभी तो आप, जब मौका पड़े तो उनको उनकी बात की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, या उसमें गलत और सही को फ़र्क कर सकते हैं। फिर आप मुझसे मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया, आदि, शायद तुझे दीन इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों की मौजूदा हालत ज़ार, गुरबत और मुफलिसी रोक रही हो। अल्लाह की कसम, अन करीब एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों में माल इतना वाफर हो जाएगा कि कोई शख्स तुम्हें सदका कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। इसको हाईलाइट करके ना अपने दिल पे लिख लें, हालात एक जैसे नहीं रहते। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये आज की सदी के मुसलमानों को सुनाने वाला जुमला है। आज हकीकत है कि इस्लाम मुफलिस लगता है, गरीब लगता है, और आज मुसलमान होना कोई फ़ख्र की बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है कि जब मुसलमान दुनियावी तौर पे भी असर रसूख रखेंगे और दीन के नाते से भी आगे होंगे, इंशाल्लाह। तो कह दे और दुआ करें कि उसमें हमारा हिस्सा डल जाए। ये हम सब इस वक्त अपना हिस्सा डालने आते हैं कि अल्लाह इस्लाम की इज्जत और तरक्की में हमारा हिस्सा डाल दे। और यहाँ से आपको एक और बहुत खूबसूरत नुक्ता मिलता है, उसको नोट कीजिए, कि लीडर जो होते हैं ना वो ऑप्टमिस्टिक होते हैं, रोशन ख्याल होते हैं, हमेशा अच्छी बात सोचते हैं। आपको पूरी डूबी हुई कोई कंपनी भी दे देना, कारोबार कोई कर रहा था, फ्लॉप है, लॉस में चल रही है पूरी दुकान, आप कहते नहीं, इंशाल्लाह एक दिन ये दुकान नुकसान से निकल कर नफ़े में बदलेगी। ये लीडर्स का काम होता है, खुद तड़पें, रोएं, फिक्र करें, लेकिन लोगों को कहते हैं नहीं, पहले से हालात बेहतर है, नहीं अब अच्छे हो जाएंगे, अब बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। और आप याद रखें कि तिल कलैया मनोदा विलुहा बैनन्नास, ये दिन है कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इसलिए ना आज अपनी इज्जत पे फख्र करें और ना शोहरत पे फख्र करें, और ना पस्तियों में डूबे में और किसी इल्ज़ाम में पड़े हैं तो उस पे गम करें। एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर इज्जत देगा, शर्त एक है कि आप अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक काम करते रहें, फिर आप देखिएगा अल्लाह ताला आपसे कितनी खैर के मामले कबूल कराएगा। फिर इसके बाद देखिए, ए आदि, शायद तुझे इस दीन को कबूल करने से मुसलमानों की किल्लत और दुश्मनों की कसरत का एहसास रोक रहा हो। अल्लाह की कसम, तुम अन करीब सुनोगे कि पूरे खित्ते अरब में इस्लामी परचम लहराएगा और हर सू अमन का ऐसा माहौल होगा कि एक औरत तन्हा अपनी सवारी पर कादसिया से रवाना होगी और बेखतर सफ़र करती हुई मदीना मुनव्वरा पहुँचेगी। दौराने सफ़र अल्लाह ताला के सिवा उसके दिल में किसी का डर ना होगा। यहाँ से क्या पता चलता है कि खौफ अमन में बदलेगा। नबी सल्लम ये खुशखबरियाँ दे रहे हैं, और आप देखिए कि यहाँ खबर दी गई है, हुक्म नहीं है। بعض لوگوں نے اس بات کو جو حدیث آپ نے کی تھی اس کو فقہی مسئلہ بنا کر عورت کے تنہا سفر کرنے کی دلیل بنا لیا. آپ کو تو نہیں پتا لیکن جو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا آپ سے بھی, وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر مدینہ میں آئے گی, تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا ہے تو پھر یہ تو ہوگا, تو پھر یہ تو ہونا ہی چاہیے. تو حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہاں آپ کا فوکس امن امان ہے, پیس ہے, یہاں کوئی آپ حکم نہیں دے رہے, پھر وہ دین کے سارے مسائل ایک طرف ہو کے صرف اس ایک بات پہ تو آپ ساری بات نہیں لیتے. تو لہٰذا اس موضوع کی ضرورت نہیں اس وقت, لیکن اشارہ دے رہی ہوں کہ بعض دفعہ بات سچ ہوتی ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرنے سے حکم کا پھر نوعیت بدل جاتی ہے. اے دی, شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے. اللہ کی قسم تم ان قریب یہ خبر سنو گے کہ سر زمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. میں نے تعجب سے دریافت کیا, کیا کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ؟ اب یہ اس کی حیرت کیوں ہے بھلا؟ آج کی میں نام نہیں لینا چاہتی, کسی بھی بڑے نان مسلم یا کافر کا نام سن لیجئے کہ اچھا اس کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے. کوئی بھی بڑا امیر کو بلینیرین ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو یقین نہیں آئے گا نا, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس طرح کسرا اس وقت کی سپر پاور تھی, بڑی بڑی طاقتیں تھیں اور حیرت ہو رہی تھی اللہ کے نبی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنتے ہوئے. آپ نے فرمایا ہاں مسلمان کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے. جناب ادی فرماتے ہیں یہ باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. ادھر سے آپ نے کیا سیکھا اپنے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آج تھوڑے ہیں, آج کمزور ہیں, آج مارے کھا رہے ہیں, آج کوئی فتح اتنی نہیں ہوتی, پر ساتھیوں میں ڈیڈیکیشن بہت ہے, تو یہ جم گئے تو دیکھیے گا تبدیلی ہوگی. تو اس میں آپ کو ایک لیڈر کا اعتماد دکھ رہا ہے نا, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, اصل تو آگے ہونے والا. یہ جملہ سن کے کئیوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, کوئی حملہ ہو جائے گا, کہاں ہوگا بھائی, ابھی تو اسلام کا کوئی اتنا کام ہی نہیں ہوا, ابھی کام تو آگے ہونا ہے. تو لوگ ڈر جاتے ہیں. تو یقین کیجئے یہ یقین آپ سے کام لے گا اور یہ یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنا بھی اندازہ تھا کہ بہت سارے لوگ ظاہری چمک دمک دیکھ کر اسلام پہ آتے ہیں نا, اور کئی لوگوں کو اسلام کی چیزیں جب کمزور دکھتی ہیں تو پیچھے ہوتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے. دیکھیے کیوں کہا گیا کہ وم بھی نعمت ربی کا فتح حدث, کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو. اسی طرح سورۃ توبہ میں آتا ہے واحد الحم مستتا تم من الخیلی اور کچھ اور, کہ تم ان کے خلاف جتنا اسلحہ اور گھوڑے تیار رکھ سکتے ہو کرو. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ دشمنوں کے سامنے بڑے بنے آپ, کمزور بات ہی نہ کرو, نہیں کہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں, الحمدللہ سب ٹھیک ہے, اللہ نے بہت دی ہے, بہت ہتھیار ہے ہمارے پاس, ایٹم بم بھی ہے, تاکہ وہ ذرا ڈر جائے. کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ دشمنوں کو مروب کریں. جو ہم روب میں آ جاتے ہیں نا تو اگلے کو پریشان کرنے سے زیادہ ہم خود کر دیتے ہیں. تو مروبیت اچھی ہوتی ہے, ہتھیار کے استعمال سے زیادہ اس کی نمائش کو اسلام پسند کرتا ہے, تاکہ دور سے دکھاؤ یہ کچھ ہے ہمارے پاس, ذرا ڈر کے رہنا. اور آپ ایک بات یاد رکھیں, یہاں ایک بڑی رقیق سی بات بھی ہے, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ابتدائی دور میں دین کی طرف آتے ہیں, وہ کوئی کامیابیاں دیکھ کے نہیں آتے, انہوں نے تو کوئی فتوحات دیکھی نہیں ہوتی, نہ بدر دیکھی, نہ انہوں نے خنین دیکھی, نہ خندق دیکھی, کچھ نہ دیکھی, وہ حق کے ساتھ آتے ہیں. لیکن یہ انسانی کمزوری ہے, جتنا حق کامیاب بھی ہوتا جاتا ہے نا لوگ ان گروپس کے ساتھ جڑنا پسند کرتے ہیں. جیسے دین کے نام پہ بھی دیکھیے فیوروٹزم یا فیمسزم, آج بھی لوگ کہیں گے فلاں جگہ پڑھنے جائیں گے, فلاں ادارہ, فلاں نام, فلاں یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی نام ہے نا, اندر کی بات چاہے اس سے بھی اچھی کسی جگہ ہو. کہتے ہیں نا کہ بڑی دکان پھیکا پکوان, کچھ اس طرح کی باتیں سنی ہے نا, لیکن یہ سچ ہے کہ جب سات کامیابیوں کی کارناموں کی لسٹیں لگ جاتی ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا اسلام میں آنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو مجھے اس میں کیا عمل کی بات ملی؟ کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتایا کریں, اپنے قرآن کی باتیں, اپنے اسکول کی, اپنے دین کی, کہ یہ بھی ہے وہ بھی, اور آگے تم یہ بھی کریں گے وہ کریں گے. جھوٹ نہیں بولنا, نہ کوئی بہت زیادہ بھڑے مارنی ہے, لیکن لوگوں کو اپنے دین کو خوبصورت کر کے دکھائے. آخری حصہ دیکھیے کہ اب اسلام تو مل گیا, اور کس ذریعے سے ملا, کن رستوں سے ملا, اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا اینڈ کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے دو نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں, تیسری ابھی باقی ہے, اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی. کیا मैंने बचश्मे खुद यानी अपनी आंख से देखा कि एक औरत तन्हा अपनी सवारी पर कादसिया से चली और बिला खौफ व खतर सफ़र करती हुई मदीना तय्यबा तक पहुंच गई। और मैं इस लश्कर में बजाते खुद मौजूद था जिसने किसरा के खजानों को अपने कब्जे में ले लिया। और मैं हल्फिया तौर पर कहता हूँ कि तीसरी निशानी भी ज़रूर होके रहेगी, और वो क्या थी आइए देखते हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच कर दिखाया। तीसरी निशानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे खिलाफत में पूरी हुई। मुसलमानों के पास माल और दौलत की इस कदर फरावानी हो गई कि ज़कात लेने वाला कोई मुख्ताज मुफलिस नहीं मिलता। जी तीसरी निशानी ये थी कि इतना माल मिल जाएगा कि माल लेकर लोग फिरेंगे और कोई ज़कात नहीं लेगा। आज सोचिए इस बात का यकीन आता? और हकीकी मानों में अगर आज मुस्लिम इकोनॉमिक्स राइज कर दी जाए ना दुनिया में, और मैं दुख के साथ कहूँगी कि हम मुसलमान उसके रास्ते की रुकावट हैं। इतना खूबसूरत सेटअप है इस्लाम का इकोनॉमिक, ये सूद तो अपनी मौत मर जाए, और ये रिश्वत और ख़राबियाँ गंदगी माल हराम इसकी तो कहीं आपको शक्ल ना दिखे अगर हम दुनिया में इस्लाम का इकोनॉमिक्स लगा दें। लेकिन चूँकि हमें परवाह नहीं, हमारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ के भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। बिला शुबा रसूल अक़दस ने सच फरमाया और जनाब अदी बिन हातिम की कसम भी पूरी हो गई। तो इससे क्या पता चलता है? नबी की सच्चाई, पेशन गोइयाँ। देखिए आपकी रिसालत के साथ पेशन गोइयाँ भी थी, अल्लाह आप ताला आपकी ज़ुबान से हक कहलवाता था। ये कुरान की ज़ुबान से हमने सुना, सहाबा ने किसकी ज़ुबान से कुरान सुना? नबी की ज़ुबान से सुना ना, तो उसी नबी की ज़ुबान से अगर हक बात सुन गए और पेशन गोई आने वाले वक्त की सुनी तो वो भी सच हुई। तो ये थे अदी बिन हातिम। अपनी ज़िंदगी में हमें कुछ लगता है? मैं अक्सर सोचती हूँ हमारी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है और कहाँ गुजर रही थी, हम किधर हैं। वो एक बड़ी अच्छी कोटेशन मुझे किसी ने भेजी तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उनसे मत डरो जो अपना बदला ले सकते हैं, बल्कि उनसे डरो जो अपना मामला अल्लाह पर डाल देते हैं। फिर जब अल्लाह बदले लेता है तो चीखें निकल जाती हैं। इन लोगों से मत डरें जो अपना बदला लेना जानते हों, हमेशा उन लोगों से डरें जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हों। तो अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचाए। यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।